यज्ञ का फल भेंट करेगा, मैं उसके यहां भोजन करूंगा, दूसरों के भोजन में करता नहीं। द्रौपदी ने कहा कितने यज्ञ चाहिए आपको? 100 यज्ञ चाहिए। 100 यज्ञ बस, ज्यादा तो नहीं चाहिए ना। लो कोई थेलो भरियोड़ा है बेटा यज्ञ रहो। आने ज्यादा नहीं, 100 यज्ञ। तेरे पास में कितने यज्ञ है? महाराज मेरे पास में 500 यज्ञ है। 500 यज्ञ कब किए? कब किए? आज किए महाराज, आज किए। मैं जिस कुटिया से रवाना हुई और आप तक पहुंची हूं, 500 कदम में चल करके आई हूं, और लिखा है गंगाया योजने यज्ञम गोदावरिया अर्ध योजनम प्रयाग से क्रोशम एकम च हरिगुरु संत पदे पदे। गंगा जी की यात्रा जाओगे पैदल यात्रा करते हुए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो एक योजन पर एक यज्ञ का फल मिलेगा, मतलब चार कोस के ऊपर एक यज्ञ का फल मिलेगा। चार कोस मतलब 4 से 12 किलोमीटर मात्र एक यज्ञ मिले। गोदावरी की यात्रा के लिए जाओगे तो आधे 2 कोस पर यज्ञ का फल मिलेगा, गोदावरी का ज्यादा है। गंगा या योजने गोदावरी या अर्ध योजन प्रयाग से क्रोश में कम चाहे, प्रयागराज की यात्रा पर जाओगे तो 1 कोस पर एक यज्ञ का फल मिलेगा। ये प्रयागराज के विषय में। परंतु भगवान और गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जाओगे तो एक एक कदम के ऊपर एक एक यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं जहां से रवाना हुई यहां तक भगवान का नाम लेती लेती पहुंची हूं, और 500 यज्ञ मेरे पूरे हो चुके हैं। पाउंडे 500 किए हुए, तो 100 तो आपको भेंट, बाकी का 400 बाकी फिर कदे बुलावा था ना, फिर कदे बुला ले जल तू जना। दुर्वासा जी हार खा करके, वह देवी वास्तव में तुम्हारे सामने इन बातों के समय मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, आना पड़ा उनको भोजन करने के। तो ये बात बता रहे तो ऋषि साग प्रसंग भारत में, महाभारत में इस बात की साक्षी है। दुर्वासा द्रौपदी का प्रसंग इसी बात को स्पष्ट करता है। तो सद्भावना अपने हृदय में प्रबल होनी चाहिए कि किस प्रकार सत्पुरुषों के प्रति, गुरु महाराज के प्रति हम भावना रखते हुए अपना जीवन, अपने कदम और अपना समय सार्थक करें। सज्जनों, ऐसे महापुरुषों के विषय में बड़ी विलक्षण बातें दयाल जी महाराज ने अपने इस गुरु प्रकरण के अंतर्गत हमारे लिए लिख करके बताई है। एक बार की बात है, जीव कृत आश्चर्यवद जे कोई भयास शुद्ध सो मोसु वर्णन करो वक्ता राज प्रसिद्ध। दयाल जी महाराज ने बताया कि वक्ता के रूप में जब बात बता रहे हैं तो जिज्ञासु ने बात पूछी कि महाराज जो इस जीवात्मा भगवान नाम के प्रताप से क्या पहले अशुद्ध आचरण करने वाले वो भी शुद्ध हो गए थे, और हुए तो कुछ प्रसन्न कृपा करके आप हमें बताइए। तब महाराज ने वक्ता ने वापस जवाब दिया, मानसी शिष्ट माए विधि कयो संकृताय कीजिए शिष्ट पाए हुक्मी रुदर रसा पिता की आज्ञा सहित वेचर ज खादिश पिशाच अबदरिश किए हैं बंदर रसा ब्रह्मरिश सोई खाए करुणा करी पिताय भुजन वीण निकाय असुर अकाल सा शिव जी अब समेत मान ली तुम्हारी भेंट पातक पातक का जेठे किए है चंडाल सा। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के समय में जब रुद्र भगवान प्रकट हुए, शंकर भगवान प्रकट हुए, तो उनसे कहा, क्यों वो भ्रकुटी से पैदा हुए ना, क्रोध आ गया था उनको, क्रोध आने पर मतलब जिस समय सनकादिकों से कहा कि तुम लोग जाओ सृष्टि पैदा करो, सनकादिकों ने मना कर दिया, महाराज हम तो भजन साधन करेंगे, ये काम संसार का काम हमसे नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो क्रोध से भ्रकुटी तन गई, भ्रकुटी तनते ही एकदम भ्रकुटी फट गई और उसमें से बालक पैदा हुआ, क्रोध ही बालक बनकर के सामने आ गया, रोने लगा, वही रुद्र प्रकट होकर के आए और यही शंकर बने। अब शंकर को सामने रोते देखा, रो मत, और वो बैठ गए। अब बैठने के बाद में ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा, मजा मुझे क्या आ गया, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, देखो अब आप कृपा करके सृष्टि बढ़ाने में मेरी सहायता करो। शंकर जी चले गए। बारह स्त्री और बारह नाम प्राप्त करके सृष्टि बनाने लगे। पिता की आज्ञा पालन के लिए बैचर, राक्षस, यक्ष इत्यादि जो पिशाच बड़ी क्रोधी ने इन लोगों को प्रकट किया। शंकर जैसे क्रोध में थे तो वैसी सृष्टि पैदा कर दी। अब वो लोग पैदा होते हैं राक्षस लोग, तो जो ऋषि मुनि साधु दिखे उन्हीं का कलेवा कर जाते हैं। इधर दूसरे ऋषि मुनि साधु पैदा करे और शिवजी की संतान जाकर के उनको चट चट खत्म कर दे। अब ऐसे समय में लोगों ने जाकर के पुकार के महाराज ये शंकर जी की सेना तो हमारे को नष्ट कर रही है, हम भजन कैसे करें, हमारे तो काल बड़े हुए हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने कह दिया शिव जी बंद करो तुम अपना काम, सृष्टि मत बंधाओ, तुम्हारी भेंट मान ली, तुम तो जाओ तपस्या करो, एकांत में बैठे करो, ऐसे तुम करोगे तो मेरी सृष्टि बढ़ेगी नहीं। अभी तो तुमने पाप ही पाप पैदा करने वाले ऐसे लोग पैदा कर दिए। इस प्रकार उनको मना किया तो ध्यान रूप शंकर भाई, शंकर भगवान तो ध्यान लगा के बैठ गए। अच्छी बात है, ब्रह्मा जी ने कहा जैसे करो ध्यान करो चलो। ब्रह्मा कहो मैंने सुगुण भगत प्रभाव सुखदाय। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा नारद मुनि अब इस संसार में जहां कहीं भी इस प्रकार हरि नाम के प्रताप से दुष्टों की दुष्टता जैसे मिटे वैसा आप काम करो। सब लगे कहन क्रोध आय उचार मारत अंतरामा पुकार। एक दुष्ट जीव ताम जाता दुखाय अंतकाल होय सोई उपाय। ब्रह्मा प्रसाद नारद ज्ञान पुनर्वार मार कयो असुरवान। अब असुर लोगों को कल्याण करने के लिए नारद जी ने एक तरीका बताया। तरीका क्या कि उन लोगों से कहा जो कोई सामने आवे उसको को मार 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 मारो मारो मार मार। तो ऐसे तो मार मार करने को इनसे मार का उल्टा राम बन गया इनके लिए। मरा मरा करते वाल्मीकि वाली बात हो गई, तो मरा मरा करते क्रोध पूर्वक वचन से मारे गए जो लोग थे। तो अंतरामा अंतरामा पुकार सो भय दुष्ट सब संत रूप। वे संत रूप बन गए राम नाम के प्रताप से। भले ही उन्होंने राम नाम राम के लिए नाम नहीं लिया, मरा मरा के लिया, परंतु वो आखिर में नाम ने अपना काम कर ही दिया। चाहे कितने भी और भी पापी क्यों नहीं हो, आबीर गंग जवन के आर किरात होनंद्र पुलिंद पुलकसा आबीर कंका यवना कसा दिया ये निज पापा युदुपाश्रयात शुद्धंत्र तस्वीर प्रभविष्ट वे न भागवत जी में लिखा है ना। जिस तरह परमात्मा के नाम की उपासना करने से किरात भील उनंद्र पुलकस चंडाल अमीर अभीर कंक यवन खस इत्यादि और इनके समान दुराचार अनाचार करने वाले और जितने भी पापी हैं वे सब लोग महापाप करने से व्यक्ति तत्काल पवित्र और निष्पाप हो जाते हैं। इस नाम के प्रभाव से उस परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। एक प्रसंग, ये तो संयुक्त रूप से दृष्टांत बताया, एक व्यक्तिगत प्रसंग बता रहे हैं नमुची असुर का। एक नमुची नाम का असुर हुआ, एक सुतो नमुची असुर अंध बड़ भीड़ भ्रात केतान वृंद, बड़ा भारी ताकतवर था, बहुत से उसके साथी थे। मैं पति असुर सारा महेश सो लियो जीत ताको सुरेश, सभी असुरों का स्वामी था। परंतु एक बार इंद्र देवता ने उससे युद्ध करके उसको परास्त कर लिया और उसको जीत लिया, सब राज देश सुन लिया छीन, उसका राज छीन लिया, देश छीन लिया और संपत्ति छीन ली। अब वो असुर है उस समय महानी बलहीन हो गया, निर्बल बन गया बेचारा, कहूं रहने ठोर कहीं पर भी उसको रहने के लिए जगह नहीं मिले, बड़ा दुखी हो गया, इधर से इधर भटकता फिरे, कहीं कोई उसको सहारा देने वाला नहीं। ता समय मिले नारदयाल, एक दिन वो अपने बाल बच्चों के साथ में जंगल में इधर उधर इधर उधर भटक रहा था। भाई बड़ी दुर्दशा हो जाए, पहले महाराजा बनड़ा हो और बाद में इन प्रकार अचानक गुणों पड़े जन बड़ी दुर्दशा हुए। नारद जी सामने मिल गए उसको जंगल में, अब बड़े प्रेम भाव से उसने नारद जी को देख करके प्रणाम किया, साष्टांग वंदन किया। आज मेरा भाग्योदय हुआ जो आप जैसे संतों का संग मिला महाराज। मैं पति मोय सब सुखी था महाराज, अंत दुक्कुण विहाय। अब उसने अपने दुख की कहानी उनको बताई। मैं बड़ा दुखी हूं महाराज, राजा मैं रह चुका हूं असुरों का, परंतु इंद्र के सामने मेरी पराजय हो गई। इस पराजय के कारण से आज मैं कहीं भी एक जगह ठहर नहीं सकता हूं, भटक रहा हूं। जहां कहीं भी जाता हूं लोग बाग मुझे बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इंद्र मेरा ऐसा छाती में चुभने वाला सूल हो गया है, लेकिन मैं करूं क्या, मेरा जोर नहीं चलता है। इसलिए मैं महान दुखी हो रहा हूं महाराज। मेरा दुख कैसे भी दूर हो, आप कृपा करो। आप संत महात्मा हो, अवश्य मेरा संकट और दुख दूर कर सकते हो, मुझे पूर्ण भरोसा है। इसलिए आपके चरणों में मेरा बार बार वंदन है। इंद्र जोरे भयो जग कर नयो, जीतने नहीं समृत अभी। असुर केता मिले संग तेरे चले, जिद्द में हार हो जाए तभी। एक संज्ञा सुने पाठ कहू सो बने, सिद्ध कारज हो जाए तेरो। ताश प्रताप बल ईश तब श्रोमणी, मान ले सतजो वचन मेरो। नारद जी बड़े दयालु, सबको उसके भले की बात पूछने पर बताए देते हैं। राक्षस पूछे तो उनको बता दे, देवता पूछे तो उनको बतावे, मनुष्य पूछे तो उनको बता दे। अब इस समय नारद जी उसे कहने लगे, बात सुनकर के देख तो भाई, इस समय इंद्र बड़ा बलवान हो गया है, क्योंकि उसने ऐसा नया यज्ञ किया है। यज्ञ के प्रताप से बहुत ताकतवर है। यदि तुम कितने ही असुरों को साथ में ले जाकर के उससे युद्ध करोगे तो तेरी हार ही होगी, अभी उसको जीत नहीं सकोगे। हाँ, एक उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक पाठ तुम्हें सिखा रहा हूं। यदि तू मेरे बताया पाठ सीख लेगा और उपाय को काम ले लेगा तो तेरा मंदिर सिद्ध हो जाएगा। उसका प्रताप ऐसा है कि तू खुद श्रोमणी बन जाएगा। यदि तू मेरी बात को सत्य मान ले और उस पर विश्वास करके मैं कहूं जैसे कर ले तो तेरा काम सहज हो सकता है। नमुची कहने लगा, महाराज तम समृत गुरुदेव, आप अज्ञात हो ही करू, वो ये बतावो भेव अभयदान जन्मा दियो। आप मुझे भेद बताइए, आप समर्थ गुरुदेव हो, जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही काम करूंगा, आपके आदेश का पालन करूंगा भगवान। इसलिए कृपा करके मुझे बताओ आप अवस्थ। नारद जी महाराज उनकी बात सुनकर के कहने लगे, देख तो भाई, इसके लिए तो सबसे पहले तो तुम्हें अपनी आश्री विद्या का सारा छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये तमोगुणी विद्या है जिससे लोगों को मारना काटना खाना गंदा खाना पीना, ये बातें छोड़नी पड़ेगी। और हृदय में विष्णु भक्ति पालन करनी पड़ेगी, वैष्णव भक्ति धर्म धारण करनी पड़ेगी। सो कर्त विष्णु पुण्य धर्त ध्यान षोडशा अंग भक्ति विधान, ये काम करके तब जब तुम लग जाओगे इस रास्ते में तो 16 अंग वाली भक्ति वो तुम्हारे को प्राप्त हो जाएगी। दिव्य अंग भक्ति निर्गुण उपास गुरु ज्ञान ध्यान अंतर प्रकाश, इस रास्ते पर चलने से तुम्हारे हृदय में सहज में प्रकाश पैदा हो जाएगा। इसके बाद में नारद जी ने बड़े प्रेम भाव से उस नमुची को बैठाया, बैठा करके उसको उपदेश दिया, सारी ज्ञान चर्चा की बातें बताई, भगवान की भक्ति बताई, आश्री खान पान छुड़ाया, आश्री बोलचाल छुड़ाए, तमोगुणी से हटा करके उसे सतोगुणी बना दिया। उपदेश लिए तो आनंद था। अब जब नारद जी से उसने उपदेश प्राप्त किया तो एकदम बहुत प्रसन्नता हो गई, एकदम शांति आ गई। ऐसे मन में सोच लगा, मैं तो बहुत बलवान हूं, मैं कमजोर हुई नहीं, मैं बहुत बली हूं। ऐसे मन में प्रसन्नता आ गई। सब खान पान तजिए पेरान पुनि बोल चाल गति साधु ज्ञान, तांदार बाल संन्यास में धुनकार राम गुरुदास है। तो नारद जी ने जो बात बताई तो उसके अनुसार उनकी स्त्री है, उनके बालक है और उनका जो सैन्य बल है, सभी नारद जी के कहे अनुसार राम नाम की धुनि करने लग गए। पंडित भवन रमणे स्वरूप उज्ज्वल प्रकाश गुरु भक्त रूप, मानुष मोहला राम दाम सूरज तेज संभयोताम। अब जो पूरा परिवार ही राम भजन में लग गया तो पूरा का पूरा स्थान वो राम द्वारे के समान लगने लगा, अंधेरा मिट गया, गुरु भक्ति का प्रकाश फैल गया। ऐसे सूरज उगने से जैसे कोई रात का अंधेरा सहज में मिट जाता है, उसी प्रकार उस नमुची के यहाँ पर सहज में अंधेरा अज्ञान का दूर होकर के आनंद का प्रकाश छालने लगा है। आनंद द्वंद्वता नाद घोर झालरा भैर शंखा मरोर गुरुदास भाव धुनकार होय मिल वृंद सुर शंकर सकोय सब भक्त मत आवद निशान तब भगे शत्रु वर्त आनम। जब राम भजन में आनंद होने लगा तो वहां पर द्वंद भी बजने लगी, द्वंद भी नाद घोष होने लगा, जागर बलने लगी, शंख बजने लगे, टंकोरा बजने लगे, मंदिर में बाजे जगह सब घर घर में ये बजाले बजने लगे। गुरु महाराज का दास बन गया था इसलिए चारों तरफ वो राम नाम की ध्वनि आने लगी। अब मिल ब्रंद सुरे शंकर सकोय सब लोग जो है जो आस पास में आते हैं उनके कानों में ध्वनि पड़ती है और वास्तव में वो सब शंकित हो जाते हैं, अरे ये नाम यहाँ कहाँ पर आ गया। हनुमान जी लंका में पहुंचे और वहां जैसे विभीषण ने राम नाम लिया, ये नाम यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ ये नाम राम का नाम लेने वाला कौन। तो ये बात है कि सब शंका करते हैं। सब भक्त मत आयुध निशान, सभी जो भक्ति के निश्चयात्मक विचार है मानो हथियार है उन लोगों के पास में, और शत्रु रूप जितने भी आन देव उपासना वगैरह है आन भाव शत्रुगण वे सब जगह छोड़ छोड़ करके वहां से भाग गए। इन लोगों में अतुलित बल आ गया, कोटान वृंद सैन्यसमान, अब जो भी इनके पास में आता गया वो आने वाला है इन्हीं के समान बलवान होता गया क्योंकि उसने राम नाम की शक्ति प्राप्त कर ली। अब बहुत सी सेना इकट्ठी हो गई, तब एक दिन वही नमुची जो इंद्र से हारा हुआ है वो दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा युद्ध करने के लिए। समशेर भक्त गुरुगम पाज, गुरु धर्म की सुबह पास में शक्ति है, आवदम प्रकार आठों समेत आठ प्रकार के जो आयुध यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आठ प्रकार के साधक के साधन होते हैं, यही मान लो उसके पास में आठ प्रकार के हथियार हैं। इन हथियारों को लेकर के उसने तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। उसने कह दिया त्रिलोक ना राखूं अखेत, मैं तीनों लोकों में ऐसा कोई प्राणी नहीं रखूंगा जो भक्ति नहीं करने वाला है, उससे जिंदा ही नहीं रखूंगा, उसको खत्म कर दूंगा मैं। वरुणाद लिए तत्काल घेरे, पहले पहले गया वरुणपुरी को उसने घेरा लगा करके उसको ललकार देवी वरुण जी ने कहा आ जाओ युद्ध करो, या तो भजन करो नहीं तो युद्ध करो मेरे से। गुरु भक्त साय के करुण चेहरे सो भयो विष्णु भक्ति प्रभाव सब राम राज मेट्यो दुसाव, उनके सामने वरुण जी ने नतमस्तक होकर के हार स्वीकार कर ली, महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अच्छी बात है चलो। उसके ऊपर विजय प्राप्त करके सब राम राज मेट्यो दुसाव, राम राज छा गया और जो दुष्भाव है संसार में उन मिटा दिया। इंद्रादि भगवो सेना समेत इंद्र लोक में पहुंचा है, स्वर्ग में पहुंचा है, इंद्र देवता अपनी फौज को लेकर के उसके सामने भाग गया, खड़े नहीं रहा जिसने पहले इसको हरा दिया था, आज वो खुद उसके सामने भागा जा रहा है। तो कह रहा ठहरे ना कहां भागा जा रहा है, अरे भाई तुम्हारे पास में ऐसी ताकत है मैं इस ताकत का सामना नहीं कर सकता, चला गया। ता आन डाण मेटे पलेट, वहां पर दुष्ट लोगों की देव लोगों की जो मर्यादा थी और उन लोगों की जो वहां पर शक्ति थी बोलबाला था उसको उसने वहां सदा के लिए दूर कर दिया। बाद में कुबेर जी के यहां पर जाकर के घेरा लगाया, उनको जीत लिया। गुरु महाराज और राम भक्ति के प्रताप से वहां पर भी उसकी पूर्ण विजय हुई। वहां पर उसने राम सभा बनाई एक बैठने के लिए और एक रामशाल विश्राम करने के लिए, जहां पर सब लोग नित्य नियम से बैठ करके नित्य नियम सहित सिमरण पोषाल स्कूल खोल दी राम नाम की, वहां पर स्कूल ही स्वर्ग में जाकर के सब कोई पढ़ाई करो और नाम की पढ़ाई करो आनंद लेओ, और कोई इसको नहीं जाता है उसकी वहां पर वो मार पीट करके धुलाई कर देता है। नव खंड मंड सब रहे जीत, नव जो खंड है उन संपूर्ण नव खंड में केवल एक उसकी रीति यही रहनी चाहिए, राम नाम का प्रवर्तन, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। नवखंड जो इलाव्रत रम्यक इरणमय कुरु हरि भारत केतुमाल भद्राश और किमपुरुष ये नौ खंड हैं, इन सब खंड में केवल एक उसी के फैलाए हुए सारी बातें राम नाम की वो फैल गई। पाताल सुर्ग मृतलोक नीत, पाताल लोक को भी उसने राम नाम के प्रभाव में लगा दिया, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक को तीनों लोकों को उसने पूर्ण रूप से अपने कब्जे कर लिया। एक बार उसने सुनाया कि यमपुरी में यमराज जी प्राणियों को दंड देते हैं, वहां पर लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वो लोग तकलीफ पाते हैं, इसलिए वही वहां जाकर के हम राम भक्ति का प्रचार करेंगे। एक दिवस सुनियो जमपुर निधान ते जीव दंड कर्तव्य कल्याण, वहां राम भक्ति नहीं पाप फंद, पाप का फंदा है इसलिए वहां पर राम भक्ति नहीं होती है। तत्काल चलो जीत निरंतर, उस यमपुरी को जीतने के विचार से वो वहां से चल पड़ा बहुत अपने बल के साथ में, सेना समेत गुरु भगत धीर, गुरु भक्ति से जिसमें बड़ी भारी शक्ति आ गई है वो सेना के सहित जाकर के यमपुरी के पास में पहुंचा। बलवंत राम सूरा सुधीर, राम नाम के प्रताप से सब बड़े बलवान है, सूरवीर है, कोई कायर नहीं कमजोर नहीं। उसने जाकर के यमपुरी को घेर लिया, भाई से कामते हुए जमदूत बेचारे जो बड़े प्रबल थे वहां तक गरज रहे थे, वे सब दुबक गए, घबरा करके मौन हो गए। सूरज सुतन अर्चन सुहाय, हम भूर भाग जनर्ष पाय, तज दंड पास किंकर कुचाल, दुखदाय जीव सब मेट जाल। अब इस प्रकार जमदूतों को जब निर्बल होते देखा, यमराज जी ने कहा क्या बात हो गई महाराज, महाराज गजब हो गया, कोई द्वारपाल द्वार पर ऐसा सूरवीर आ गया है जिसके कारण से हम भयभीत हो गए, हमारे हाथ कांप रहे हैं, कौन है आप पता कीजिए महाराज, उन्हें संभालिए। उसी समय यमराज जी हम अपने यमदूतों के साथ में आए हुए अतिथि का पूजन करने के लिए द्वार पर गए और कहने लगे, हम भूल भाग जनदर्श पाए, हम अवभाग्य हैं, हमारा जिसने कि आपके दर्शन पाए, महाराज पधारिए अंदर विराजिए। तज दंड पास किंकर कुचाल, यमराज जी भी आए ना, बिल्कुल सीधे साधु पुरुष बन करके हाथ जोड़ करके इस प्रकार बन करके आए, कोई हाथ में दंड मुदकर पास वगैरह लेकर के आवे नहीं, क्योंकि साधु के सामने तज ममता और मान जाइए ना, तज ममता और मान, ये सब छोड़ करके अपना अधिकार छोड़ करके गए। दुखदाय जीव से मेट जाल, वहां जाकर के दुखी होते हुए प्राणियों की जो पीड़ा बंद हुई, पहले रोना धोना हो रहा था, रोना धोना बंद हुआ, उन्हें देख करके यहां नमुची ने कहा, क्या बात है अभी यहां पर लोग रो रहे क्यों रहे थे, आज यहां पर पापी लोगों को दंड दिया जाता है, सबको हरिनाम सुनाओ, यहां पर सबको हरिनाम सुना करके यहां से मुक्ति करके वैकुंठ धाम में पहुंचा दो, यदि रोक टोक तो करते हो तो आओ सामना करो, और नहीं तो जैसा मैं आदेश देता हूं उस आदेश का पालन करो, तत्काल आज्ञा का पालन होना चाहिए। ए नरक कुंड राखू न कोई, ये तुम्हारे नरक कुंड में नहीं रखूंगा, इनको तोड़ फोड़ करके बुलडोजर चला दो और माथे सब सब खत्म कर दो, एक भी नरक कुंड नहीं चाहिए। गुरु राम भक्त सिद्ध काज होए, गुरु शरणागति और राम भक्ति से ये सारा काम हो सकता है। ए करे हो भक्ति नहीं युद्ध सा, ये काम करते हो तो ठीक है और नहीं करते हो तो आओ युद्ध करो मेरे से, मैं तुम्हारे सामने इस प्रकार युद्ध करने के लिए आया हूं। टंकार चाप जीतन दुषा, ऐसा कह करके अपना धनुष उठाया, धनुष की प्रत्यंचा खींची, उसकी टंकार की भी आवाज सुनकर के थर हरे दूत गर्भपात नार, सारे जो दूत जमदूत थे उनके कड़े जो कांप उठे भय के मारे, औरतों के गर्भपात हो गया, गर हरे भेर भक्ति पुकार, उन भक्ति की आवाज चारों तरफ जोर से गर्जना करने लगी। हर हरे करत सेना उचार, सेना ऐसे भी हरे 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 करने लगे। जर्जरे होत किंकर दुसार, जितने भी यमदूत थे वे सब ऐसे स्थित हो गए जिनके शरीर में पसीने की पसीने डूबूंदे टपकने लगी। अपने सामने देखते देखते संपूर्ण नरक के कुंड उन्होंने तोड़ बाताड़ करके सफा कर दिए, कुंड खत्म कर दिए। के भगे लगे परे अग्र कई यमदूत जो भाग गए, निकलते निकलते उनके पैरों में चोट लगी, कई के माथे में चोट लगी, कई नमुची के पैरों में आकर के गिर पड़े। क्षमा याचना की, धर्माद भक्ति अघाध गाध पुनि भय दूध दास में साध। ऐसे समय में जितने भी यमदूत थे ना, 14 करोड़ यमदूत है, 14 करोड़, तो 14 करोड़ यमदूत है, सबके सब साधु पुरुष बन गए। सब हाथ जोड़ करके जैसे अब नमुची ने आदेश दिया, राम नाम की माला फेरो, सब के सब उस वहां पर बैठ करके राम नाम का जप करने लगे, राम भजन करने लगे। तो यमपुरी में भी उसने तो राम द्वारा बना दिया पूरी यमपुरी को, ही बस आनंद करो बस। पुनि भय दूता समय साध, गुरु राम मंत्र सब दीक्षा पाए, नर नार बाल एक स्वभाव, स्त्री पुरुष बालक सब एक ही स्वभाव वाले हो गए। ते खान पान मिल बस अरगस्त प्रसाद साध बिंतर प्रतिष्ठ, वन राम धाम शुद्ध मोक्ष बाग, वो जो स्थान है साक्षात राम जी का स्थान बन गया और मोक्ष का मार्ग बन गया। सारे खंड दंड मिट गए उनके, जमपुरी का मार्ग ही बंद कर दिया, गुरु भक्ति के प्रताप से वैकुंठ का मार्ग खुला कर दिया। कोई गेट नहीं, अब तक कोई गेट बंद हुआ तो जाने देवे नहीं, लेकिन उनके लिए गेट खुला, जो भी सीधे चले जाओ बाईपास, कोई रोकने वाला नहीं। आजकल तो बाईपास मत जावे ना, पैसा देना पड़ेगा, वही पैसा रोक जाए जिन्हें आडा लकड़ा खड़ा कर दे, लेकिन ये ऐसा करते हैं कि भाई बार खोल देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, सीधे पहुंच जाओ भगवान के पास। सुर संज्ञा जीव राखी न कोई, देवतना जीव नाम की संज्ञा बाकी नहीं रखी संसार में, सबको भगवत रूप बना दे। आनंद कंद चर्चा से कोई, सभी केवल एक आनंद कंद परमात्मा की ही चर्चा अपने जबान से किए रहते हैं। जद नमो राज ऐसो प्रकार तब तेज कून वा समीवार, उस समय जितना तेज प्रताप उनका रहा है उनकी बराबरी करने वाला और कौन हो सकता है भैया। पश्चात जनक इन संपदार, ये तो नमुचे के समय की बात, उसके बाद में ऐसी घटना एक बार और हुई है और वो हुई है जनक महाराज के समय की बात है, जनक महाराज के समय की त्रेतायु की बात बता रहे हैं। उस समय भी जनकपुरी में हड़ताल हो गई थी, हड़ताल हो गई थी जनकपुरी में, मुख्य द्वार बंद हो गए थे सब। अब हुआ ऐसे कि जिस समय जनक महाराज परमधाम पधारने लगे तो उस समय जनक महाराज विमान में बैठ करके जा रहे थे, और विमान में बैठ के जा रहे थे तो इस नरक के ऊपर से वो विमान जाने लगा। तो जो ही विमान नरक के ऊपर से जाने लगा तो वहां यमपुरी में प्राणियों को जो दंड दिया जा रहा था तो उनकी चिल्लाहट, उनका रोना धोना, चिल्लाना हो हल्ला उनके कानों में पड़ रहा था। पर जो ही वो विमान ऊपर गया कि यमदूतों ने देखा कोई साधु महात्मा आए हैं, इसलिए किसी को पीटना नहीं चाहिए, पिटाई बंद कर दी, सब उनके हाथ ठंडे हो गए। बचपन में पढ़ाई करते थे ना, उस समय कोई गलती करते हैं तो दंड मिलता, अपने खुद की बात बताओ भाई, गलती करते हैं दंड मिलता है। अब दंड मिलता है तो दंड देने वाले के क्रोध से बड़ा डर लगता, पर ऐसे समय में कोई मेहमान आ जाता तो भगवान से कहते महाराज रोजी ने मेहमान बुला बोक, रोजी ने मेहमान आवे तो दंड नहीं मिलेगा, स्वाभाविक बात। तो वहां ऐसे मेहमान आ गए तो उनका दंड देना बंद हो गया, हाथ ठंडे हो गए। जनक महाराज के वहां पहुंचते विमानधारी पार्षदों से पूछा, अरे भैया ये जगह कौन सी है, अभी कौन यहां पर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे? भगवान, ये यमपुरी है। यमपुरी में जो मृत्यु लोक में पाप करने वाले प्राणी होते हैं, उन लोगों को यहां बुला करके कर्मानुसार दंड दिया जाता है और नरक कुंड में डाल करके उनको शुद्ध किया जाता है। ये यमराज जी की नगरी है, यमराज यहां के राजा हैं। तो इस प्रकार यहां पर कितने ही प्राणियों को दंड मिल रहा था, पर आप जैसे साधु पुरुष यहां आ गए, आपकी हवा इनको लग गई, इस कारण से इन लोगों की पीड़ बंद हो गई है। जमदूतों ने भी इनकी पिटाई बंद कर दी है। मैं देखना चाहता हूं, मैं चलूंगा नरकपुर कैसी है। अब साधु को नरकपुरी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखने के लिए जाते थे। अरे भाई, कोई कोर्ट कचहरी में दावे में हार जावे, उन्हें तो जेल में जाना पड़े, देखे ही वो आदमी जेल में देखे ना देकर जावे। और एक आदमी मिनिस्टर है, वे भी जेल में जावे, तो बताओ दुनर में फर्क कहीं है? जेल तो भाई है, परंतु फर्क हुआ है, एक तो दुख भोगने वास्ते जावे, रोता रोता जावे, एक वे जो दुख है दुख मिटाने वास्ते जावे। तो संत महापुरुषों ने कहा, हम तो नरकपुर देखने के लिए जाएंगे, पर आज आप यहां जाने के अधिकारी नहीं है। नहीं है तो हम तो जाएंगे, मेरी मर्जी, तुम जबरन ले जाओगे क्या आगे? नहीं महाराज, आपकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, विमान से आप पहुंच गए नरकपुरी में, यमपुरी में। यमराज जी को पता लगा, द्वार पर सामने आए स्वागत करने के लिए, पूजन किया, सत्कार किया, सिंहासन पर उनको विराजमान किया, और फिर वहां अपने लोगों के विषय में, स्तुति के विषय में जो जानकारी चाही जनक महाराज ने, सब बातें उन्होंने स्पष्ट करके बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, यहां पर इतने लोग हैं ना, पर अभी आपके यहां आने के पहले तो लोग बड़े संतप्त थे, दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, परंतु आपके आने से उन सबका कष्ट दूर हो गया है। संतों के संग आने मात्र से उनका दुख दूर हो गया है, इसलिए सभी चुपचाप सामने खड़े हैं, सब हाथ जोड़े आपकी सेवा में हाजिरी में खड़े हैं। जनक महाराज ने सबको देखा, सबको प्रणाम किया। अब यमराज जी से कहा, यमराज, ये मेरे ही आने से इनको तकलीफ, इनकी तकलीफ बिटी है? हां साहब, तो मैं तो यही रहूंगा, आगे जाऊंगा ही नहीं, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। पार्षदों ने कहा, भगवान जी, आपके रहने लायक स्थान थोड़ा ही है, आपके लायक तो वैकुंठ धाम है, जहां पर साक्षात भगवान विराजमान रहते, वो लोग आपका तो वहां पधारी है। जनक महाराज ने कहा, मेरे लिए तो वैकुंठ से बढ़कर के स्थान मिल गया, जहां एक प्राणी के आने से हजारों प्राणियों की जलन मिटती है, उनका दुख दूर होता है, तो इससे बढ़कर के मेरे लिए और कौन सा स्थान होगा? इससे बढ़कर के और कोई स्थान है? एक मेरे कानों से इतने लोगों को आराम मिल रहा है, आगे चल करके करूंगा क्या? आगे तो स्वाभाविक आनंद में आराम में बैठे हैं, आराम बैठे हूं क्या आराम देना? यहां बैठने से इन लोगों को आराम है, तो मुझे तो बस यही रहने दो, मैं आगे नहीं चल सकता। डेरा जमा लिया, अड़ गए वहां पर जनक महाराज। क्या तो यमराज जी कह के जाओ यहां से भगो, वो भी कह सकते नहीं, महापुरुषों के सामने सबको हार खानी पड़ती है। अब वे अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार नहीं, क्या किया जाए? उधर जो बैकुंठ में महात्माओं के आगमन की तैयारी हो रही है, उनके स्वागत के लिए तैयारी में मंगल कलश लेकर के लक्ष्मी ले पर कर सर साध दिन के यो बैकुंठ नाथ, जो वहां पर धन्य भाग उनकी जय जयकार हो रही है, महात्मा आ रहे हैं, इसलिए स्वागत की तैयारी करो, स्वागत की तैयारी करो। द्वार पर आकर के खड़े हो गए, अब आ रहे, अब आ रहे, अब आ रहे। अब उनको क्या पता गाड़ी पीछे पंचर हो गई, लेट हो रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। इधर पार्षद लोग थे जो लेने के लिए आए, वो बेचारे अकेले अकेले वहां से गए, अकेले अकेले गए, भगवान के धाम में पहुंचे। अरे तुम अकेले क्यों आ रहे हो, क्या हुआ? जनक महाराज क्यों नहीं आए? डांट पड़ी उनको तो जोरदार, वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, महाराज करे क्या, वो हमारे बस में नहीं है। हम लोग जब विमान में लेकर के आ रहे थे, रास्ते में नरकपुरी आ गई, यमपुरी आई, तो यमपुरी देखने के लिए जनक महाराज अंदर पधार गए। वहां पापी प्राणियों की पीड़ा कुछ समय के लिए शांत हुई, तो जनक जी ने कह दिया मेरे यहाँ आने से जब इतने लोगों को आराम मिलता है, मैं यहां से आगे नहीं चलूंगा। अब मैं आगे नहीं चलूंगा, आगे मैं तभी चल सकता हूं मेरे साथ इन सब लोगों को साथ लेकर के वहां वैकुंठ में पहुंचाओ, तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो यहीं रहूंगा। तो महाराज ये बात है, वे डट करके बैठ गए। पापी आदमी भी उनके कारण से आराम से बैठे हुए और हंसी मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, और वो तो वहां पर विराजमान हो गए। भगवान ने कहा भाइयों तुम बड़ी भारी गलती करते हो, अरे जैसा उन्होंने कह दिया वैसा बिना पूछे कर दो, बिना कुछ सोचे विचारे कर दो। जब उन्होंने कह दिया कि मेरे साथ में इन सबको ले लो तो मैं आगे चलूंगा, तो सबको रवाना कर दो, वहां से नरक कुंड खाली कर दो, बिल्कुल एक भी नहीं रखना, तो एक भी मत रखो वहां पर, कुछ भी नहीं रखना, पूरे इस प्रकार नरक कुंड को सभा करना। जो हुक्म महाराज, उसी समय फिर जितने प्राणी थे हजारों की संख्या में विमान के टोले वहां से रवाना किए गए। एक एक प्राणी को एक एक विमान में बैठा करके पूरे आदर के साथ में जमपुरी से रवाना किया गया। यमराज जी खड़े खड़े देखते रहे, कुछ भी कर सके नहीं, कुछ भी रोक सके नहीं, और सबके देखते देखते हरिनाम की जय जयकार करते बोलो आनंद कंद भगवान की। सब लोग विमानों में बैठ करके वहां से चले आए। पाछे अकेला रह गया यमराज जी बेचारा, मां क्या मारो बोले, कोई काम धंधा है ना, कोई धंधा किन्हें कई काम बोलावे, और काम बोलावे जिन्हें बोलावे, जगह सब भी आज सुने हाथ बैठा, कोई नरक में रहने वाला आदमी प्राणी नहीं। वे जमदूत बेचारा 14 करोड़ है, जो कोई आटी फिरे ना कोई आटी फिरे, उनके लिए भी कोई काम नहीं। क्योंकि काम तो जब कोई दंड किसी को देना हो, किसी को मारना हो, किसी को भगाना हो, किसी को पकड़ कर रखना हो, तो काम हो। एक अब प्राणी कोई यहां बाकी नहीं बचा है, तो कौन वहां पर बाप दूसरा काम उनके पास बनेगा। धूमधाम माग मेट्यो जो आज किंकरा झंगरा दंड साज कीने उधार जीव कुंड सोय विवान दिव्य आनंद होय पुन चले वृंद संगी के दान नित नमो साध एवो प्रवान। ऐसे संतों का प्रभाव बड़ा विचित्र है भाई। गुरुदेव बंद सोई दयाल भव भार मेट जीव दुष्ट काल। ऐसे जो संसार में गुरु महाराज का जो प्राणी आश्रय ले लेता है, उसके जन्म मरण का डर सदा के लिए मिट जाता है, पार हो जाता प्राणी संसार में। रामदास शिवराज जो मेरे परम गुरु परम आराध्य जो गुरुदेव जी महाराज है, उनके चरणों में मेरा बारंबार वंदन है, बार बार वंदन है। भक्ति का प्रभाव कहा नहीं जा सकता। अरे कहां तो बेचारा वो नमुची जो बिल्कुल दुर्बल, जिसको कहीं रहने के लिए ठोर ठिकाना नहीं, सो भयो काल को कालतम, वही नमुची भक्ति और गुरु कृपा प्राप्त करके काल का भी काल बन गया। नारद नमो ताकू प्रणाम, पर ऐसी बात बताने वाले गुरु रूप नारद जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसे गुप्त बात बता करके उस नमुची को परम प्रबल बनाया और हरि भक्ति में लगाया, एक को लगाया, और एक के लगने के बाद में कितने प्राणियों का उद्धार हो गया बेचारे। एक के संग एक दुष्ट आदमी का साथ कर लेता है तो कितने दूसरे कितने प्राणियों को नुकसान हो जाता है, और एक गुरुधर्मी का गुरुमुखी का साथ कर लिया जाता है, कितने प्राणियों का उद्धार हो जाता है। शिव पद्म पुराण वाक्य सार पद्म पुराण में शिवजी के वचन के रूप में ये प्रसंग वर्णन हुआ करता है। निज भगत सगत पायो विचार, ये भक्ति की शक्ति का विचार इस प्रकार उन्हें वहां पर प्राप्त हुआ है। इतिहास पुराण सुन आद ग्रंथ मुनिराज ऋषि वर्ण्यो सिद्धंत। ये जो नारद मुनि ने जो ये बातें बताई, वो जीव के उद्धार करने के लिए, वो जीव के कल्याण करने का जो सिद्धांत बताया है, ये सत्पुरुषों से प्राप्त उनकी कृपा के कारण से सदैव जीव को सफल करने वाला होता है। ऐसे उस प्रभु के चरणों में जो गुरुमुखी बनने वाले जैसे अदम प्राणी हैं, पर वो भी गुरुमुखी बन करके उनके उपदेश का पालन करके ऊंचे बढ़ सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसे कल्याण प्रदान करने वाले परम गुरु महाराज के चरणों में हमारा बार बार वंदन है। हे प्रभु परम दयाल हमारा आप बिना गुण करे उदारा है। जिज्ञासु निवेदन करता है, हे प्रभु आप परम दयालु प्रभु के बिना मेरा कौन उद्धार करने वाला है? कोई नहीं है, कोई मेरा रक्षक नहीं है। परम पंत गुरुदेव बतायो, सिद्ध रूप आत्म समझायो। जीवात्मा का जो आत्मस्वरूप है केवल गुरु महाराज ने ही समझा करके इसे रास्ते पे लगाया है। अपनो जान करके आपने इसकी प्रतिपाल की है, इसको आपने अमृत पान कराया है अपने वचनों के माध्यम से। अब उसको भक्ति में लगाया है, उस भक्ति का प्रभाव जिस प्रकार सभी प्राणियों के हृदय में बसा रहे ऐसी आप सदैव कृपा करते रहना। आपके चरणों में हमारा बारंबार वंदन है, बारंबार वंदन है। यदि वो गुरु भक्ति का आश्रय ले लेता है तो वो भी परम कल्याण करने वाला साधु पुरुष बन जाया करता है। निस्संदेह बात है, निस्संकोच बात है, इसमें किसी प्रकार कोई नहीं। अब वो शक्ति अपना काम करती है, अरे एक इंजेक्शन होता है ताकत का, अब उसको जिसको लगाएंगे उसके वो इंजेक्शन काम आएगा, ताकत की चीज है। एक ब्राह्मण के लगाओ तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, क्षत्रिय के लगाओ तो उसकी ताकत बढ़ेगी, वैश्य के लगाओ तो उसकी ताकत बढ़ेगी, शूद्र के लगाओ तो उसकी बढ़ेगी। वो ये नहीं देखता कि भाई इसकी तो मैं ज्यादा बढ़ाऊ और इसकी कम बढ़ाऊ। ये जो नाम है वो तो एक साधारण वस्तु है, उसकी भी शक्ति सबको मिलती है। तो नाम की शक्ति है, ये अनंत है, ये गुरु कृपा से है। इसका अनुभव प्राप्त करके हम इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं, उसे लेना चाहिए और लेकर के अपने जीवन को उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार ये प्रसंग आज का यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। आगे का प्रसंग यथा समय रामाज्ञा के अनुसार कल